इनायत उसकी है और बस उसकी ही है, चाहे वो अपनी मर्जी से आए या फिर ज़बरदस्ती। किसी को हक नहीं है इनायत को उससे दूर रखने का। अगर कभी ऐसा हुआ तो वो सारी दुनिया में आग लगा देगा। वो एक राक्षस बन जाएगा जिसका सामना कोई नहीं कर सकता है। और अगर इनायत ने उसे धोखा दिया तो वो इनायत का इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। रियाज इनायत को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लेकर जाता है और उसे बेड पर लेटा देता है। वो इनायत के सर को थपथपाते हुए उसे कहता है, आराम करो। इनायत को तो मन कर रहा था कि वो दूसरी तरफ से कूद कर कहीं भाग जाए, लेकिन वो जानती है कि वो यहाँ से भाग कर जाएगी भी कहाँ। इस कमरे के अलावा वो इस वक्त इस घर में भी नहीं भाग सकती है। रियाज अपनी घूरती हुई निगाहों से इनायत को देखता है। वो अपनी जगह से खड़ा होता है और कमरे से बाहर चला जाता है। एक तेज आवाज के साथ जैसे ही कमरा बंद हो जाता है, इनायत का पूरा शरीर डर से कांप जाता है। इनायत तुरंत अपनी जगह से खड़ी होती है और दौड़ते हुए बाथरूम में जाती है। वो बहुत देर तक शावर के नीचे खड़ी थी और खुद के शरीर से रियाज की छुअन को मिटाने की कोशिश कर रही थी। ठंड का एहसास होने पर उसने कपड़े बदले और वापस आकर बिस्तर पर लेट गई। उसने खूब देर तक खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो जिब्रान को याद कर रही थी। जिब्रान, जिब्रान, इनायत की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो सफ़ेद बादलों पर चल रही थी। उसे सिर्फ बादल ही बादल नज़र आ रहे थे। आसपास उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था उसकी आवाज़ वापस उसी के कानों में टकरा रही है, और वो बस जिब्रान का नाम अलाप उसको याद किए जा रही थी। वो बस उसी का नाम पुकारे जा रही थी। एक बार फिर चारों तरफ अंधेरा छा गया था और हवाओं में अजीब माहौल पैदा हो गया था। इनायत बादलों पर दौड़ते जा रही थी। उसे ये तक नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन अचानक से उसे कुछ महसूस होता है और वो अपनी जगह पर रुक जाती है। जिब्रान, इनायत ने एक बार फिर से उसका नाम पुकारा, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक से एक काली छाया इनायत के सामने आ जाती है जो उसे अंधेरे में खींच लेती है। उस अंधेरी छाया को देखकर इनायत के चेहरे पर एक सुकून उतर आता है। उसे महसूस हो गया था कि ये किसकी परछाई है। इनायत के पैर अपने आप उस तरफ चलने लगे थे, लेकिन जितना वो उसके करीब जाने की कोशिश करती, वो परछाई उतना ही उससे दूर चली जाती। जिब्रान, रुको, कहाँ जा रहे हो? इनायत रोते हुए उस अंधेरे में पुकार रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ वापस उसी के कानों में आ रही थी। इसके अलावा उसने उस परछाई का चेहरा भी नहीं देखा था, लेकिन वो जानती थी कि ये जिब्रान ही है। अचानक से किसी ने उसकी कमर को पकड़ लिया था और इनायत की पीठ उसके सीने पर लगी हुई थी। इनायत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहती है, जिब्रान, नहीं बेबी, तुम्हारा डरावना सपना। जैसे ही ये आवाज़ इनायत के कानों में पड़ती है, उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो जाती है। वो इस आवाज़ को पहचानती है, इसे अच्छी तरह से जानती है। वो घबरा कर पीछे पलट कर देखती है और डरती हुई आवाज़ में कहती है, याकूब। इनायत का चेहरा डर से भर गया था, उसका गला सूख गया था और अब उसके मुंह से सिर्फ हवा ही निकल रही थी। याकूब ने अपने हाथ इनायत के चेहरे की तरफ बढ़ाए और अगले ही पल इनायत नींद से जाग जाती है। वो तेजी से सांस लेते हुए बेड पर बैठी हुई थी और अपनी बेतहाशा धड़कनों को महसूस कर रही थी। उसने साइड टेबल पर रखा हुआ पानी का ग्लास उठाया और उसे एक सांस में पी लिया। अल्लाह अकबर। खिड़की से आई इस आवाज़ से इनायत को एहसास हो गया था कि ये अजान का समय है। इनायत हैरानी से खिड़की से बाहर देखने लगती है। वो इतनी डर गई थी, उसे ये तक याद नहीं आया कि उसे फजर की नमाज अदा करनी है। शायद पिछले दिनों उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, इस वजह से उसका मन इतना भटक गया था कि वो ये बात भी भूल गई थी कि उसे फजर की नमाज अदा करनी होती है। इनायत को याद आता है जब उसके अब्बू से इसी तरीके से सुबह सुबह उठा दिया करते थे और उसे नमाज के लिए तैयार किया करते थे। पहले पहले तो इनायत ने बहुत नखरे दिखाए और उसके लिए ये बहुत मुश्किल भी रहा था, लेकिन जैसे जैसे उसने अपने अब्बू के साथ नमाज करना शुरू किया, वैसे वैसे उसे अच्छा लगने लगा। लेकिन जब इनायत के अब्बू का इंतकाल हुआ तो एक पल के लिए इनायत का उसके खुदा पर से विश्वास उठ गया था। उसने ये तय कर लिया था कि वो कभी अब खुदा की इबादत नहीं करेगी। उसने हमेशा से ही ऊपर वाले पर यकीन रखा था और उसे ये विश्वास था कि उसका खुदा कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा। लेकिन जब उसके अब्बू का इंतकाल हुआ तो इनायत का ये विश्वास डगमगा गया था और उसने कभी खुदा की इबादत ना करने का फैसला कर लिया था। लेकिन अचानक से उसे अपने अब्बू की कही एक बात याद आ गई कि इस दुनिया में आना और इस दुनिया से जाना पहले से ही तय है। जो इस दुनिया में आया है उसे वापस जाना ही होगा। मिट्टी की अमानत मिट्टी में ही मिल जाएगी। उसके लिए कभी भी अपने खुदा पर शक मत करना, क्योंकि वो जब भी कुछ करता है तो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं करता है,
बल्कि बेहतरीन करता है। उसका फैसला हमारे लिए थोड़ा सा तकलीफ वाला जरूर हो सकता है, लेकिन उसे पता है कि आने वाले अच्छे कल के लिए आज ये तकलीफ सहनी जरूरी है। अपने अब्बू की इस बात को याद करते ही इनायत की आंखों से आंसू छलक आते हैं। वो अपने अब्बू से बहुत प्यार करती थी और उसके अब्बू के बताए हुए रास्ते पर ही चलती थी। खुदा से जो उसका विश्वास एक पल के लिए डगमगा गया था, उसके अब्बू की दी हुई इस सीख ने उसे वापस से खुदा पर यकीन करवा दिया था। आसमान में अभी भी अंधेरा था, कुछ समय बाद सूरज उगने वाला था। खिड़की के पास खड़े होकर इनायत अपने दुपट्टे को हिजाब की तरह पहन रही थी, लेकिन खाली आसमान को देखकर उसके मन में बार बार इस बुरे सपने का ख्याल आ रहा था। ये बुरा सपना उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसे इस सपना के जरिए कुछ बताना चाहता है, लेकिन फिर इनायत ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। एक सपने से ज्यादा बुरा तो उसके साथ हकीकत में हो रहा है। अब वो सपने की भाषा को समझे या जो उसके साथ हो रहा है उसके लिए खुद को तैयार करे। फजर की नमाज अदा करने के बाद इनायत अपनी अम्मी के कमरे में जाती है। वो देखती है उसकी अम्मी सुकून से सो रही है। अपनी अम्मी को ऐसे देखकर इनायत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसने अपने मन में अपने अब्बू को याद करते हुए कहा, देखिए अब्बू, आपकी छोटी सी इनायत इतनी बड़ी हो गई कि मुश्किलों का सामना करने लगी है। आप जहां भी हैं अब आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अम्मी का पूरा ख्याल रखूंगी। अम्मी को कुछ भी नहीं होगा और ना मैं किसी को कुछ होने दूंगी। आपकी यादें और आपकी सीख मैं हमेशा अपने साथ लेकर चलूंगी। बस आप मुझे इतनी हिम्मत देना जो मुझे आने वाले कल में लड़ने में मदद कर सके।